ओम शांति। सूफी संतों में एक महिला संत बहुत समय पहले हुई थी, जिसका नाम था राबिया। राबिया अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व थी और उसके अपने जीवन में उसने कभी कुछ लिखा नहीं, ना ही उस पर कुछ लिखा गया। जो कुछ इसके विषय उसके विषय में ज्ञात है वो उसके जाने के बाद संतों ने बैठ लिखा। जब वो थी तो एक संत हसन समकालीन था और हसन और राबिया की बहुत सी कहानियां मशहूर है। एक बार जब राबिया और हसन एक जगह बैठे हुए होते हैं, एक संसार का व्यक्ति आता है और जो संत होता है हसन, उसके चरणों में बहुत सी सोने की अशर्फियां डाल देता है और वो कहता है कि मुझ गरीब की ओर से ये भेंट। तो हसन एकदम से गुस्से में आ जाता है, चिल्लाता है, ये क्या मोह माया मेरे चरणों में डाल रहे हो? क्या तुझे ये भी नहीं पता कि संतों के चरणों में क्या डाला जाता है? हटाओ इसको, ये माया है और हमें इस पैसों से क्या लगाओ, इस सोने से हमें कोई लगाव नहीं है, हटाओ। तो राबिया कहती है, हसन क्या तुम्हारा अब भी सोने से मोह नहीं गया? तो हसन कहता है, मोह? मैं तो हटाने की बात कह रहा हूं, इसमें मोह कहां से आया? मोह नहीं है इसीलिए तो कह रहा हूं, हटाओ। तो राबिया कहती है, यदि वास्तव में ये सोना मिट्टी है और तुम्हारे इर्द गिर्द तो बहुत सी मिट्टी पड़ी हुई है और यदि कोई दूसरा मिट्टी डाले तो तुम ये कहते हो कि यहां मिट्टी नहीं डालो, यदि वास्तव में ये सोना मिट्टी ही है तो ये कहने की भी क्या आवश्यकता है कि इसको हटाओ? इसका अर्थ मोह, लगाव, आसक्ति, लोभ अंदर दबा है, उसको केवल ढका था, गया नहीं था। जब लोभ समाप्त हो जाए और यदि सोना वास्तव में ही मिट्टी है तो पैसे है या नहीं है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो है वो भी मिट्टी है। फिर ये बेचारा गरीब बेचारा, उसके पास देने के लिए भी तो कुछ नहीं है, इतना निर्धन है कि केवल सोना ही दे सकता है, इसे कहां से अध्यात्म की ऊंची बातें पता है? बेचारा ये तो बहुत ही गरीब है और ये सोना दे रहा है और जो कि मिट्टी है, तो मिट्टी को रख दो, उससे भी क्यों लगाओ, ये भी क्यों दुत्कारते हो उसको? तो वो कहता है, हाँ, हसन कहता है, मेरे मन में अभी भी लोभ है, लगाव है, आसक्ति है, अभी भी मैंने सोने को सोना ही जाना है, ऊपर से केवल ढका हुआ था, बाकी लगाव तो बहुत है। तो संसार में जो भी वस्तुएं हैं, व्यक्तियों का उनसे लगाव है और उन लगाव को छिपाने के लिए ज्ञान युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मन में आसक्ति और वासना भरी है पर उसको छिपाने के लिए प्रेम, प्रीत, लव, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंदर मैं छिपा हुआ है, पर उस मैं को छिपाने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न व्यक्ति करता है, और इस तरह मनुष्य जीवन उलझा हुआ है। सुबह की साकार मुरली में बाबा ने कहा, माया के सुख ने क्या कर दिया, भरमाया है। भरमाना अर्थात क्या, भ्रमित कर दिया है, भ्रम इल्यूजन उत्पन्न किया है, बरगलाया है मनुष्य की चेतना को। जो है वो नहीं दिखता है, कुछ और ही दिखता है। सुख है नहीं, सुख का अनुभव भी नहीं है, आभास भी नहीं है, भासता है केवल सुख। बाकी संसार के किसी भी सुख में सुख नहीं, संसार की किसी भी वस्तु में, संसार के किसी संबंध में, संसार की किसी भी बात में जरा भी सुख नहीं। हाँ, सुख का आभास मात्र है। हाँ, वो सुख का आभास ही उसे भरमाता है, सुख भोगता है, पश्चाताप करता है, फिर भोगता है, और वो पश्चाताप उसे मुक्त भी नहीं करता, क्योंकि वो सुख एक एडिक्शन है संसार का, विकार का, और उसी सुख में व्यक्ति फंसा है। भगवान जब आते हैं तो एक ऐसे प्रेम की शिक्षा देते हैं जो इस संसार से परे है। तो कल की अव्यक्त वाणी में बाबा ने प्रेम के विषय में चर्चा की। एक दूसरा, अब एडिशन क्या करनी है उसकी चर्चा की। तीसरा, जो एडिशन करोगे उससे फायदे क्या क्या है उसकी चर्चा की। उसके बाद दुआओं की चर्चा की। उसके बाद ब्राह्मण कल्चर की चर्चा की। उसके बाद नवीनता क्या लानी है ब्राह्मण जीवन में उसकी चर्चा की। और अंततः रूहानी ड्रिल क्या करनी है उसकी चर्चा की। ऐसी 5-6 बातें कल बाबा ने बताई। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रेम, क्या कहा प्रेम के विषय में। स्नेह के विमान में आए हो, स्नेह के अलौकिक विमान में आए हो। सुबह की मुरली में है वो लोग, समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। उनके पास महल विमान है, यही स्वर्ग है। एक वो विमान, दूसरा विमान स्वर्ग का विमान, और तीसरा विमान संगम योगी विमान, जो कि अलौकिक विमान है। तो प्रेम का सागर बाप प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलने आया है, वो सागर है, नदियों से मिलने आया है। किसी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, आज ज्ञान सागर बाप हजारों ज्ञान गंगाओं में नहाने आए हैं। आज ज्ञान सागर बाप क्या करने आए हैं, हजारों गंगाओं में नहाने आए हैं। शायद 18 जनवरी की मुरली थी 1980 की। तो प्रेम के विषय में क्या क्या बातें कही, 10 बातें बोलिए। कौन कौन सी? सबसे पहला तो ये प्रेम क्या है, अलौकिक विमान है। क्या ये योग का अभ्यास किया जा सकता है कि मैं आत्मा या मैं फरिश्ता एक अलौकिक विमान में बैठकर उड़ रहा हूं? कितना अच्छा योग का अभ्यास है। मैं फरिश्ता क्या कर रहा हूं, एक विमान है, कल्पना करनी, मानस चित्र बनाना, विजुअलाइजेशन से एक अलौकिक विमान है, स्वच्छ शुभ्र पवित्र, फूलों से श्रृंगारित, और उसमें मैं बैठा हूं, और ये प्रेम का विमान है। प्रेम के पंख हैं और विमान उड़ रहा है इस दुनिया से उस पार, इस देह की दुनिया से उस पार। ये योग का अभ्यास हो सकता है या योग की शुरुआत अमृत वेला, आंख खुलते ही देखो कि प्लेन खड़ा है बिस्तर के बाजू में और उसमें बैठना और स्विच ऑन करना, स्मृति का स्विच ऑन करो और उड़ो। तो सबसे पहली बात, प्रेम क्या है? अलौकिक विमान है। दूसरा, प्रेम लहर है। प्रेम की लहरों में लहरा रहे हो। प्रेम विमान है, प्रेम लहर है। इस प्रेम ने खींचा है, इस प्रेम ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, आधार स्तंभ है। प्रेम को हटा दो, ज्ञान तो तुमने बाद में सुना, बाबा ने कहा प्रेम से आए हो, तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन लहर। इस प्रेम ने तुमको क्या बना दिया? परमात्मा स्नेही बना दिया। प्रेम ने बनाया, परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं बाबा। पात्र अर्थात योग्य, परमात्मा प्रेम के हकदार, योग्य, सुपात्र, काबिल, लायक, ऐसे बच्चों से मिलने बाप आए हैं जो प्रेम के पात्र बने हैं, भगवान के प्रेम के पात्र। भगवान ने सोचा कि इनको प्रेम किया जा सकता है, ये योग्य है, सुयोग्य है। ये प्रेम कैसा है? इसके चार घटक है, कौन कौन से? ये दिल का है, अर्थात संसार में जो है वो दिमाग का है। दूसरा, यह आत्मिक है, संसार में जो है वो दैहिक है, शारीरिक है। तो एक तरफ है दैहिक प्रेम और एक तरफ है आत्मिक प्रेम, दोनों में क्या अंतर है? आत्मिक बेहद का है और दैहिक हद का है। दैहिक प्रेम क्या करता है और आत्मिक प्रेम क्या करता है? आत्मिक प्रेम चढ़ाता है, दैहिक प्रेम गिराता है। दैहिक प्रेम बेचैनी उत्पन्न करता है, दैहिक प्रेम उत्तेजना उत्पन्न करता है। दैहिक प्रेम शरीर में उत्तेजना, मन में उत्तेजना, और दैहिक प्रेम एडिक्शन क्रिएट करता है, और दैहिक प्रेम विकारों की तरफ आकर्षित करता है, और दैहिक प्रेम में पजेसिवनेस होती है, और दैहिक प्रेम में एक्सपेक्टेशंस होती है, और दैहिक प्रेम फ्रस्ट्रेशन की ओर ले जाता है, दुख की ओर, पीड़ा की ओर, दर्द की ओर, वासना से चेतना को भर देता है। ऐसी रेस्टलेसनेस, ऐसी बेचैनी उत्पन्न करता है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी विकारों में फंस जाता है, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए भी, सारा ज्ञान होते हुए भी, वो ज्ञान उसे रोक नहीं पाता देह में फंसने से, क्योंकि देह भंवर है, फंसाता है, गुल 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 फंस जाता है व्यक्ति। तो परमात्मा प्रेम कैसा है? आत्मिक प्रेम है, वो दैहिक प्रेम है। दूसरा, तीसरा सच्चा है, अर्थात संसार का प्रेम झूठ, जरा भी सत्य नहीं है उसमें, परिपूर्ण झूठ, संपूर्ण झूठ, झूठ से ओतप्रोत, लबालब भरा हुआ है संसार के सारे प्रेम, माँ बाप, बहन भाई, बीबी, बच्चे, जितने रिश्ते संबंध प्रेम है सब झूठ। कुछ दिन पहले था ना, एक अल्फ बाप ही क्या है? मक्खन, बाकी सब छाछ, छाछ का सागर है। सारे रिश्ते संबंधी नाव जिसमें डूबे हुए हैं। चौथा, निस्वार्थ, अर्थात संसार का प्यार कैसा है? स्वाद से परिपूर्ण भरा है। जो भी संसार में एक दूसरे से प्यार करते हुए दिखाई दे रहे तथाकथित प्रेमी, संसार के जो भी लोग स्वार्थ के लिए कर रहे हैं एक दूसरे से प्रेम, क्योंकि संसार में निस्वार्थ प्रेम है ही नहीं, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम केवल एक ही है और किसी से हो नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि प्रेम करने जाते हैं परंतु वासनाओं में फंस जाते हैं, क्योंकि बीच में देह आ जाता है, आत्मा आत्मा के बीच देह रूपी चाइना वॉल खड़ी है। क्या देह का अतिक्रमण कर प्रेम किया जा सकता है? हाँ, परंतु उतना श्रेष्ठ ज्ञान का चिंतन या अनुभव चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो देह देह से टकराएगा। तो परमात्मा प्रेम निस्वार्थ है, परमात्मा प्रेम सच्चा है, परमात्मा प्रेम दिल का है और परमात्मा प्रेम आत्मिक है। ये चार कंपोनेंट्स घटक परमात्मा प्रेम के है और उसके विरोध में सारे संसार के प्रेम है, स्वार्थी झूठे दिमागी है, दिमाग से प्रेम करते हैं, इंटेलेक्चुअल लव दिल से नहीं है। फिर स्नेह सहज याद का अनुभव कराता है, मुश्किल नहीं, सहज याद। स्नेह अलौकिक चुंबक है, खींचता है। उसके बाद में स्नेह सहज योगी बनाता है। उसके बाद में इस स्नेह की निशानी क्या है? दौड़ दौड़ कर आते हैं। उसके बाद में ये स्नेह कितना है? कौन सा गीत गाया बाबा ने? ना सागर में इतना जल, ना अंबर में इतने तारे, बनाया प्रभु ने है अपना, गीत है ना। तो बेहद का है, अथाह है, गिना नहीं जा सकता, अमाप्य है, अतल है, अतुल है, अतल अतुल्य है, ऐसा परमात्मा प्रेम है। फिर ये प्रेम स्नेह की रेखा है, चमक रही है, बाबा ने कहा स्नेह रेखा है जो तुम्हारे चेहरे पर चमक रही है, इतनी तुलनाएं की है, स्नेह रेखा, स्नेह चुंबक, स्नेह एरोप्लेन, स्नेह योगी बनाता, स्नेह याद कराता, स्नेह के ये चार घटक, ऐसा ये परमात्मा स्नेह है और तुम उसके पात्र हो। स्नेह तो बहुत है, अब क्या करना है आगे, एडिशन क्या करनी है, अंडरलाइन क्या करना है, एडिशन और अंडरलाइन ये बता दिया पहले। मुरली शुरू हुई समान से, ये ऊंचे ऊंचे समान, ऐसे तुम हो, ऐसे तुम में स्नेह है, ये तुम्हारा स्नेह है, और फिर आ गया अब आगे क्या करना है, अब एडिशन क्या करनी है, अब अंडरलाइन क्या करनी है। दो चीजें, अखंड महादानी और अखंड सहयोगी। सहयोगी कहां पर? ब्राह्मण परिवार में। महादानी कहां पर? दुखी प्यासी आत्माओं के ऊपर पुक चिकार चित्कार उनकी सुनाई देनी चाहिए तुमको। क्या पुकार रही हो? हे कृपा के देव, हे कृपा की देवी, दो चीजें मांग रही है, शक्ति और सच्चा स्नेह, दो चीजें पुकार रही है। तुम्हें क्या करना है? जो निर्बल है उन्हें शक्ति देनी है, जो दुखी है उन्हें सुख देना है, गुणदान देना है। तो अखंड महादानी, अखूट और अखंड खजाने तुम्हारे पास है, तुम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, इसके लिए तुम्हें देना है। आप चीजें देनी है, कौन कौन सी? मनसा से शक्तियां, मनसा से शक्तियों का दान। ड्रिल कराई बाबा ने लास्ट में, उस ड्रिल में 300 मान थे, तीसरे नंबर का कौन सा था? ड्रिल कराई, देखा ना कैसे सन्नाटा छा गया था। पहला संकल्प दिया, पिन ड्रॉप साइलेंस, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा संकल्प दिया, फिर साइलेंस, फिर तीसरा संकल्प दिया, एक सेकंड में स्थित होने को कहा संकल्प में। तीसरा कौन सा था? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा शक्तियों की किरणें चारों ओर फैला रही हूं, ये संकल्प था। तो सबसे पहला मनसा से शक्तियां विकीर्ण करनी है, रेडिएट वाइब्रेट फैलानी है। नया आत्मा मुझसे शक्तियां फैल रही है तो फैलेगी। दूसरा वाचा से ज्ञान, निरंतर हमारे मुख से ज्ञान निकलता रहे, इससे ज्ञान के नए संस्कारों का निर्माण होगा। जैसे व्यर्थ बोलने से व्यर्थ संस्कारों का निर्माण हुआ है बोलने से, वैसे ही ज्ञान बोलने से ज्ञान के संस्कारों का निर्माण होगा। तीसरा कर्मों से गुणों का दान, कर्म करते समय गुणों का दान, बिना किसी को कुछ कहे बोले दान दिया जा रहा है, गुणों का दान। जिस राबिया की हमने शुरुआत में चर्चा की थी, बचपन से ही अनाथ और फिर बाद में उसे बंदी बना लिया गया था, उसका जो मालिक था उसने एक रात उसको देखा प्रार्थना करते हुए और उसे ऐसा दिव्य प्रकाश दिखा उसके चहुओं और राबिया के, कि उसके मन में आया मैंने इसको किसको बंदी करके रखा है, ये तो कोई अद्भुत है। और उसको रिहा कर देता है दूसरे दिन उसका मालिक, वो कुछ कहती नहीं है उससे, वो तो दास है गुलाम है, पर वो उसको मुक्त कर देता है, रिहा कर देता है। तो कर्मों द्वारा गुणों का दान। चौथा संबंध संपर्क द्वारा खुशी का दान। सुबह कहा आज तुम्हारे अंदर क्या बजने चाहिए, खुशी के नगाड़े, तो जो आए उसको भी सुनाई दे और वो भी खुश होके जाए। चौथा पांचवा सबसे अलग सबसे अद्भुत और सबसे नई बात, बुद्धि से क्या कर दो? टाइम, टाइम दो। अर्थात क्या, कभी सुना के ये क्या तुमने कह दिया ये क्या कह दिया? बुद्धि से समय दो। अर्थात क्या, मुरलिया कितनी बार चली है साकार, ठीक है, और कितनी बार रिपीट हुई है साकार, उसके बाद भी दादियों को हमने कई बार कहते सुना है, ये कितनी नई पॉइंट बाबा ने आज सुना दी, जबकि उन्होंने कई बार सुनी है हजारों बार, फिर भी कभी कभी दादिया को हमने क्या सुना है कहते हुए कि ये बाबा ने देखो कैसी नई पॉइंट बताती, वैसे ही ये कितनी नई बात है। मैं तुमको नई नई बातें बताता हूं, मैं तुमको गुहे गुहे राज समझाता हूं। बुद्धि से समय का दान, अपनी दिव्य बुद्धि से समय का दान, किसी दूसरी आत्मा के लिए समय देना और अपनी बुद्धि से अपनी दिव्य बुद्धि से उसकी समस्या उसकी मुश्किल को सुलझा देना, सॉल्व कर देना, ये भी एक दान है। बुद्धि से समय का दान, बुद्धि देना, समय लगाना, कोई भी चीज को हल करने के लिए किसी और की या अपनी, तो ये क्या हुआ, बुद्धि से समय का दान। तो महादानी बनो, अखंड महादानी बनो, सफल करो और सफलता मूर्त बनो। फिर से दो बातें, पूरी मुरली में दो 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 बातें भरी पड़ी है, सफल करो और सफलता मूर्त बनो। अखंड और अखूट खजाने तुम्हारे पास है, तुम मालिक हो, तुम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। फिर दो बातें, और जब ये करोगे तो दो काम होंगे, डबल बेनिफिट। डबल फायदा कौन कौन सा, एक तो सर्व आत्माओं का कल्याण होगा और दूसरा तुम क्या बन जाओगे, तुम विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत मुक्त, समाधान स्वरूप। दूसरों की समस्या सुलझाते सुलझाते खुद ही समाधान स्वरूप बन जाएंगे। वो कविता है ना, हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है मेरी थकन उतर जाती है। दूसरा मुसाफिर उसके चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर देखा है, दूसरों की सेवा करते हुए मैंने यह देखा है मेरी थकान मिट गई। किसी और की सेवा करते करते मैं थका हुआ था, पर फिर भी मैंने सेवा की और उसकी सेवा करते करते मेरी थकान मिट गई। तो दूसरों का कल्याण होगा और हमारी समस्याएं समाप्त होगी, विघ्नों से मुक्त होंगे, विघ्न विनाशक हो जाओगे देने में, ये दो काम हो जाएंगे। और साथ में और एक चीज मिलेगी, कौन सी, दुआएं। दुआएं क्या बन जाएगी, लिफ्ट का काम करेगी। लिफ्ट में बैठ जाओ, स्मृति का स्विच ऑन करो, लिफ्ट दबाओ, बटन दबाओ और उड़ो, जहां चाहो वहां उड़ सकते हो। चढ़ने का काम बहुत किया, सीढ़ी, दुआएं सीढ़ी नहीं है। एक दिन, दो दिन, दो घंटा समस्या को सुलझाते रहना अर्थात चढ़ना, सीढ़ी, दुआएं अर्थात लिफ्ट, सूक्ष्म वतन परम धाम अपनी राजधानी, जहां जाना चाहो जाओ। तो दुआएं कमानी है। एक जगह कहा, जो धन भी लगाते हो परमात्मा बैंक में पदम गुना होकर जमा हो जाता है। तो दुआएं, सेवा करनी, दुआएं कमानी, दान देना, जो भी खजाने मिले हैं, सुबह वरदान में भी कहा, प्रवृत्ति में रहने वाले सफल करो, सारे खजाने। तो दुआएं लिफ्ट है और प्रेम विमान है। किस में बैठना है, विमान में और लिफ्ट में, लिफ्ट में भी तुम प्रोग्राम करते हो, एक सेकंड, एक मिनट का, बाप कहते हैं एक सेकंड का, लंदन के लिए खाना, दो प्रोग्राम, पीस ऑफ माइंड और कॉल ऑफ टाइम। अब ये करो, एक सेकंड में इस विमान में बैठो, इस सीढ़ी पर में बैठो और उड़ो। तो ये काम करना है। फिर बाबा ने ब्राह्मण कल्चर की बात की, क्या कहा उसके विषय में, इंग्लिश कल्चर, अमेरिकन कल्चर, अफ्रीकन कल्चर नहीं है, पांच खंडों से एक चंदन का वृक्ष बना है, वन वन की काठी, बाबा कहते हैं हमेशा वन वन की काठी है। तो एक चंदन का वृक्ष बना है, एक ही कल्चर, ये अब चिंतन का टॉपिक है जो आप सबको दे रहे हैं। ब्राह्मण कल्चर क्या है, कल्चर में, संस्कृति में कौन कौन सी बातें आती है, कम से कम 10-12 बातें लिखनी है कल के लिए काम। संस्कृति में कौन कौन सी बातें आती है, जैसे भारतीय संस्कृति क्या क्या आता है उसमें, वस्त्र आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, भोजन आता है संस्कृति में, और क्या क्या आता है, रहना, और क्या आता है, मर्यादाएं आती है, आचार संहिता आती है संस्कृति में, और क्या आता है संस्कृति में, क्या क्या आता है, भारतीय संस्कृति, अमेरिकन संस्कृति, चीन की सभ्यता, भारतीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता थी कभी, मेसोपोटामिया सभ्यता थी कभी, मिस्र की सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तहजीब, सिविलाइजेशन, सभ्यता और संस्कृति एक जैसे शब्द है। बाबा कह रहे तुम्हारा वो सब संस्कृति नहीं है अब, अमेरिकन, महाराष्ट्रियन, पंजाबी, गुजराती, ये संस्कृति नहीं है। तुम्हारी एक चंदन का वृक्ष एक ब्राह्मण संस्कृति है। तो ये ब्राह्मण संस्कृति क्या है, उसके क्या क्या घटक है, इसमें लिखना है, चिंतन करना है। एक ब्राह्मण संस्कृति अर्थात क्या, ये चिंतन का विषय है। दूसरा चिंतन का विषय है प्रेम का एरोप्लेन क्या होता है, कैसे उड़ता है, कहाँ उड़ता है, पंख कौन से है, पायलट कौन है, एयर होस्टेस, टिकट किस स्पीड से जाता है, पेट्रोल क्या है, बटन क्या है। तो ये जो प्रेम का प्लेन है कहां से कहां उड़ता है। फिर प्रेम चुंबक क्यों है, ये एक तीसरा चिंतन का विषय है। चुंबक है, किसको खींचता है, कैसे खींचता है, तो इस पर लिखना। ये तीन टॉपिक्स है आगे। तो एक ही चंदन का वृक्ष बाबा ने कहा। फिर नवीनता क्या करोगे, नवीनता क्या करोगे, हाँ नवीनता है अनुभव का। ज्ञान बहुत पता है, आत्मा पता है, परमात्मा पता है, ड्रामा पता है, सब पता है, एक चीज बाकी है अनुभव कराओ। प्रोग्राम भी बहुत कर लिए परंतु अनुभव, पांच चीजों के अनुभव क्या कराओ आत्माओं को, पांच चीजों के अनुभव कराओ। अनुभव दो चीजें कर देगा, भूलेगा नहीं और खींचेगा। अनुभव भूलेगा नहीं, खींचेगा। दो घंटा भाषण सुन लिया, सब भूल गया, अनुभव एक सेकंड का हो गया, वो याद रहेगा। और अनुभव एक सेकंड का ही होता है, अनुभव सूक्ष्म है, जिसमें आत्मा शरीर हो जाए एक सेकंड के लिए। किसी मुरली में बाबा ने कहा था कि आत्मा कांच की तरह बन जाए, स्वच्छ, बाप की किरणें पड़ेगी और अपने आप रिफ्लेक्ट होगी। तुमको सोचना नहीं है इसको सकाश दो, उसको सकाश दो, सकाश परिणाम है। अपने आप जिसको सकाश चाहिए वहां अपने आप चली जाएगी किरणें, तुम केवल वो कांच बन जाओ। कांच पर किरणें पड़ेगी और वहां से परावर्तित रिफ्लेक्ट होगी सब जगह, सब चहुओं, जहां जिसको चाहिए वहां। मुरली में ही कहा है, इच्छा है आत्माओं की पूर्ण करो, दुख से मुक्त करो, निर्बल आत्माओं को बल दो। तो अनुभव क्या कराता है, आगे बढ़ाता है। अनुभव क्या कराता है, भूलता नहीं, अनुभव खींचेगा अपनी तरफ। बाकी सब भूल जाएगा, यहाँ कैंपस में क्या था, इस परिसर में एक सेकंड का अनुभव अंदर जो समा जाएगा और उसको खींचेगा, उसको याद आएगा और एक दिन भगवान का बना देगा। बाकी जो भाषण सुने सब भूल गए, बाकी सब भूल गया, वो अनुभव मात्र उसे याद रह गया। तो पांच चीजों का अनुभव कराना है, कराना भी और खुद करना भी है। कौन कौन सी पांच चीजें, सबसे पहले ज्ञान की एक एक पॉइंट का अनुभव, ज्ञान की एक एक पॉइंट का अनुभव। मुरली पढ़कर छोड़ नहीं देना है उसको अनुभव, उसको मन में समाना, टिकाना, उसमें रमन करना, उसमें खो जाना, उसमें डूब जाना, टाइम चाहिए। एक ज्ञान की पॉइंट लेना, एरोप्लेन, उसको देखना, उसको विजुअलाइज करना, आकाश में लिखा हुआ देखना, वो शब्द अग्नि से इतना स्पष्ट उसको देख लेना ताकि वो भूले नहीं। ऐसे पावरफुल वाक्य होते हैं मुरली में, कुछ कुछ पावरफुल शब्द होते हैं। बस अब रात पूरी हुई, दिन शुरू होगा, आज की मुरली में वाक्य है एक जगह। बस अब रात पूरी हुई, दिन शुरू होगा। तो बहुत सारे पावरफुल पॉइंट्स होते हैं, उसको खींच कर निकालना है, वहां से अलग कर देना और उनके ऊपर चिंतन करना और उसकी गहराई में जाना। तो ये हो गया ज्ञान के एक एक पॉइंट का अनुभव। खाली मुरली बहुत अच्छी थी, क्लास बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक पॉइंट पॉइंट बुद्धि में ना समा जाए, तो पहला ज्ञान का अनुभव, दूसरा गुणों का अनुभव, एक एक गुण पढ़ लिया, उसका उसके विषय में सोचना, उसको समझना और उसकी गहराई में जाना। तीसरा शक्ति, चौथा आत्मिक प्यार का, आत्मिक स्थिति का अनुभव, ये क्या अनुभव होता है, केवल आत्मा दिखाई दे, ये अनुभव। जब मन से वासना मिट जाती है तो देह मिट्टी बन जाता है, जब मन में वासना भरी है तो देह की ओर आकर्षित आकर्षण होता है। बाबा ने कहा, सोचते हो मैं आत्मा हूं परंतु देह भान कहां से आ जाता है, इसका मतलब अभी भी अनुभव नहीं हुआ है आत्मा का। अशरीरीपन का अनुभव, सन्नाटा, शरीर से मैं आत्मा डिटैच हूं। जब भी कोई दादी या वरिष्ठ भाई शरीर छोड़ते हैं और हिस्ट्री हॉल में मृतदेह रखा जाता है रात भर, हमने देखा है कैसे वहां बैठे बैठे अशरीरीपन का अनुभव होता है, शरीर है ही नहीं, ये पड़ा है और आत्मा निकल चली गई। ऐसा सन्नाटा, दृष्टि लेना देना भी बंद, केवल शरीर देह की सत्ता से परे आत्मा विचरण करती है, वो एक सेकंड का भी अनुभव बहुत शक्तिशाली है। तो वैसे शरीर नीचे छोड़ जाए, शरीर की हलचल नीचे रह जाए, स्त्रीत्व और पुरुषत्व से ऊपर चली जाए आत्मा, मैं भान मैंपन को छोड़ दे, वो एक सेकंड का भी अनुभव बहुत स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली पावरफुल होगा, जिसमें केवल मैं आत्मा हूं अशरीरी। कुछ दिन पहले मम्मा की मुरली थी, जैसे मैं ज्योति बिंदु हूं वैसे तुम भी ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाओ, ये है अ जपा जप। तुम्हें मुख से कुछ कहना ही नहीं है, रूह रूहान शब्द है, रूह रूहान अर्थात मुख से बोलना बंद, रूह रूहान, रूह रूहान या रूह रिहान अर्थात रूह का रूह से वार्तालाप। शब्द की वहां आवश्यकता नहीं, शब्द के क्षेत्र से परे रूह रिहान है। तो आत्मिक स्थिति का अनुभव, मैं आत्मा और ये सब खेल हो रहे हैं यहाँ पर, ये सेवाएं भी खेल है। बाबा ने कहा, मैंने तुम्हारे हाथ में खिलौना दिया है सेवाओं का, और ये याद रखना, सेवा इज द फोर्थ सब्जेक्ट। फोर्थ सब्जेक्ट को फर्स्ट सब्जेक्ट नहीं बना देना, सेवा क्या है द फोर्थ, चौथा सब्जेक्ट है। पहले तीन सब्जेक्ट को छोड़कर सीधा चौथे में जंप लगा दी तो संघर्ष होगा, टकराव होगा, वैराग्य लुप्त हो जाएगा, स्थिति डगमग होगी। फर्स्ट ज्ञान है, योग है, फिर धारणाएं है, और फिर चौथा है त्याग तपस्या और बाद में सेवा। पहले वैराग, फिर त्याग, फिर तपस्या, फिर लास्ट सेवा। नहीं तो सेवाओं के जंगल में आत्मा खो जाती है और फिर कुछ नहीं कर पाती, केवल संघर्ष आत्मा में और डिस्टर्बेंस। हम भी डिस्टर्ब और दूसरे भी डिस्टर्ब हमसे। तो आत्मिक स्थिति का अनुभव, पावरफुल आत्मिक स्थिति का अनुभव, ऐसा अनुभव कि ये आत्माएं हैं और शरीर है ही नहीं और मैं भी केवल आत्मा हूं, और ये अनुभव इतना सस्ता भी नहीं है। इस अनुभव के लिए जबरदस्त साधना और तपस्या चाहिए, बहुत शक्तिशाली अमृत वेला चाहिए, नींद का संपूर्ण अभाव चाहिए अमृत वेले में, ड्यूरेशन भी ज्यादा चाहिए, काल विधि और दिन भर में भी बीच बीच में समान का अभ्यास चाहिए, नहीं तो दिनचर्या की हलचल सारी तपस्या को नष्ट कर देती है। पांचवा, परमात्मा प्रेम का अनुभव, प्रामाणिक अनुभव करो और कराओ, ये नवीनता है। नहीं तो वही 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 ढंग मुरली सुनने का और वही ढंग मुरली लिखने का, वही ढंग योग करने का, वही ढंग से अमृत वेला, वही 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 अगर चालू रहेगा तो थक जाएगी आत्मा, बोर होने लगेगा, कुछ मजा नहीं आएगा। इसके लिए योग के प्रयोग की नवीनता, हर दिन नए योग के प्रयोग करने हैं, नई विजुअलाइजेशन, नई क्रिएशन, मुरली से ही निकालने कौन से योग के प्रयोग करो, मां से हटा निकालने, स्नेह के सागर में लहराते रहो, सोचना ये सागर है और मैं उस सागर में डूब रहा हूं, लहरा रहा हूं, योग का प्रयोग। चुंबक है, जैसे परमधाम में वो चुंबक है, मैं इस धरती पर हूं और चुंबक ने ऐसा खींचा कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परे निकलकर मैं आत्मा ऊपर सीधा चिपक गई, द सुप्रीम मैग्नेट से, वो जो परम सुख चुंबक है, वो जो महाचुंबक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में अब हूं, जहां पर माया कुछ नहीं कर सकती। माया की माइक, मायावी फील्ड जहां पर नहीं है, वह गॉडली फील्ड है, गॉड्स पार्टिकल्स है। तो नए प्रयोग, तो परमात्मा प्रेम का अनुभव, ये क्या होता है, प्रेम का क्या अनुभव होता है। राबिया के विषय में और एक बात है, वो निकलती है एक दिन, एक हाथ में मशाल और दूसरी हाथ में वो बकेट पानी का, तो उसके पीछे उसको कहते तुम ये क्या कर रही हो, वो कहती है मुझे नरक से कोई भय नहीं, मैं भगवान से इसलिए, अल्लाह से इसलिए प्यार नहीं करती हूं कि वो मुझे नरक में डाल देगा, वो नरक की आग को बुझा दूंगी और दूसरी ओर स्वर्ग को जला दूंगी, क्योंकि मैं उससे इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि वो मुझे जन्नत में भेजेगा, ना मुझे उसकी जन्नत चाहिए ना तो उसका नर्क से भय, मैं उसको प्यार करती हूं क्योंकि लव फॉर लव सेक, कुछ चाहिए कुछ मिलेगा इसलिए प्यार नहीं करती, बस वो है और सहज है, वही चाहिए बस, वही प्यार है और वही परिणाम है, वही रिवॉर्ड है मेरा, मुझे और किसी से डर नहीं है इसलिए मैं उससे प्यार करती हूं। कैसे दिखाया है, परमात्मा प्रेम का अनुभव, गहरा अनुभव, वो भी सव्यक्त मां वाक्य बाबा के, बाप को ऐसे प्यार से याद करो, कितने प्यार से, कुशल भाई, दिलीप भाई, कितने प्यार से याद करो, कमलेश भाई, पप्पू भाई, कितने प्यार से याद करो कि आंखों से प्रेम के आंसू आ जाए, कि किसी एक मुरली में बाबा ने पूछा था, बताओ बाप कहाँ रहते हैं? तो कहा था लोगों ने सूक्ष्म वतन, किसी ने कहा परम धाम, बाबा ने कहा जहां ब्राह्मणों के प्यार का घेरा है बाप वहां रहते हैं। जहां पर ब्राह्मणों के प्रेम का घेरा है वहां बाप रहते हैं। तो ऐसा घेरा तैयार करना है प्रेम का, तो वहां बाप रहते हैं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भगत, मेरे चाहने वाले, मेरे प्रेमी अनन्य भाव से मेरी उपासना याद करते हैं, प्रेम करते हैं। हे नारद, तो वो वहां रहता है। तो इन पांच चीजों का अनुभव करना है। ज्ञान का, रोज की मुरली आई छोड़ने देना है उसको, निकालना है उसमें से पॉइंट्स खींचकर। आज कहा है ना, मूंजते हो तो क्या करो, बाबा से क्या पूछो, क्या पूछो, जो मैं कर रहा हूं कोई पाप तो नहीं है, पूछो, राय लेना। इसलिए नहीं कि तुम कम बुद्धिमान हो और बुद्धि नहीं लगा सकते, फिर भी पूछना है। जैसे रामायण में दिखाया श्री राम मारते हैं रावण को, सिर काटते फिर आ जाता है, सिर काटते फिर आ जाता है, बार बार आते रहता है। अब उसको भी पता है राम को कि कहां मारना चाहिए, फिर भी विभीषण से पूछते हैं क्या कर रहा, क्या करना चाहिए बताओ, राय दो। तो विभीषण कहता है कि यू आर रॉन्ग, हिटिंग द रॉन्ग प्लेस, इधर मारो, अमृत कुंभ इधर है। तो राय लेते हैं, तो राय लेना अच्छी बात है। वैसे भगवान से पूछो, ये जो मैं कर रहा हूं ठीक है या नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने पूछा था, तुम जो करते हो बाप के खाते में जाता है या पाप के खाते में जाता है, अपने आप को चेक करो। क्या चेक करो, बाप के खाते में जाता है या पाप के खाते में जाता है, किस खाते में जा रहा है, चेक करो। तो ये पांच चीजों का अनुभव। आगे एक जगह कहा है, चाहे किसी भी परिस्थिति में कितना भी समय पर परमात्म प्रेम का और परमात्मिक प्रेम का, आत्मिक परमात्म बल और आत्मिक बल का कितना अनुभव होता है ये चेक करो। एक जगह कहा है, धारणा स्वरूप का कितना अनुभव होता है वो देखो, योग का कितना अनुभव होता है वो देखो। तो अनुभव अनुभव अनुभव, गहरा अनुभव। लक्ष्य रखना है अनुभव का, याद रखने का लक्ष्य नहीं रखना है, केवल सुनाने का खाली लक्ष्य नहीं है। हमने मुरली पढ़ी और उसको चिंतन किया और सुना दिया, काम पूरा हुआ, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है, अनुभव। अनुभव कितना किया, चाहे सुनाओ या सुनो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुभव का दोनों से कोई ज्यादा संबंध नहीं है। कहा ना मुरली में, भाषण चाहे मत दो, प्रोग्राम चाहे मत करो, पर अनुभव जरूर करो। दो चीजें, टू लेट और लेट का बोर्ड, और दो चीजें, दो ही सीट क्या फिक्स्ड है, बाकी सारी सीट खाली है। तो अनुभव, अमृत वेला बैठते हैं तो लक्ष्य रखना है मुझे, गहरा अनुभव करना है। ऐसा शरीरीपन का अनुभव हो जाए कि फिर देह का प्यार समाप्त हो जाए, क्योंकि अशरीरी अवस्था में सब समस्याओं का उत्तर है। क्योंकि अशरीरी अवस्था ऐसी अवस्था है कि उसमें आत्मा पहुंचते ही जो समस्याएं, उलझन, रुकावटें, विघ्न, मुश्किलें, मेहनत, और एक चीज, बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकता, बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। दो बातें फिर से, बाबा को अच्छा नहीं लगता है मेहनत, मेहनत मुक्त हो जाओ, दो मार्ग है, एक है भर देने का परमात्मा प्रेम से आत्मा को, दूसरा है संघर्ष विकारों के साथ। एक एक विकार को पकड़ पकड़ के बाहर निकालना, काम आया उसको फेंको, लोभ आया उसको फेंको, चिड़चिड़ापन आया पकड़ो और निकालो फिर उसको फेंको, तो दूसरा आता है। एक तो ये मार्ग है संघर्ष, दूसरा है परमात्मा प्रेम भर दो, अपने आप बाकी सब निकल जाएगा, इतना उसको भर दो। तो ये थोड़ा आसान है प्रेम से भरने का, श्रेष्ठ विचारों से भरने का। एक ही संकल्प हो तुम्हारा, दो संकल्प कौन से, फिर से दो बातें, हर संकल्प में और हर समय विश्व कल्याण। बस क्या हो, हर संकल्प हर समय किस लिए हो, विश्व कल्याण अर्थ। फिर से दो बातें, फिर बाबा ने ड्रिल कराई, कौन से तीन संकल्प थे वो ड्रिल की। पहला, मैं कौन हूं, संगम युगी श्रेष्ठ पुरुषोत्तम, संगम युगी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ, संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। एक ही संकल्प दिया, कितना पावरफुल संकल्प है। अगर सारे दिन भर ये याद रहे कि मैं पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, संगम युगी अर्थात ये जो कलयुगी है इनसे अलग, श्रेष्ठ अर्थात कनिष्ठ नहीं अर्थात शूद्र नहीं अर्थात जिसका संकल्प जिसके आकर्षण जिसका मोह देह में नहीं जो देह से अलग, ब्राह्मण अर्थात मुख वंशावली अर्थात ब्रह्मा कुमार अर्थात उसके द्वारा जन्म लिया हुआ। एक संकल्प में श्रेष्ठ स्मृतियां समाई हुई है, परंतु टिकना है इसमें कि मैं श्रेष्ठ संगम युगी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। दूसरा संकल्प कौन सा दिया, मैं फरिश्ता हूं डबल लाइट स्वरूप। तीसरा संकल्प, विश्व कल्याणकारी शक्तियां फैल रही है। बाबा ने कहा ये अभ्यास करते रहो, हलचल में ये अभ्यास करते रहो तो दो चीजें मिलेगी, कौन सी, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। और इसका बार बार अभ्यास करते रहो, हलचल के बीच में अचल कैसे रहे इसका अभ्यास, कूल माइंडेड। हमने कुछ आत्माएं ऐसी देखी है कि एकदम शांत, इतनी हलचल हो रही है, ट्रेन के लिए लेट हो रहा है फिर भी शांत, चाहे कुछ भी हो रहा है शांत। हमारे उधर हम मुंबई में थे, एक डॉक्टर थे हमारे साथ, हमारे साथी फ्रेंड, इतनी इमरजेंसी आती थी परंतु उसको हमने इतना शांत देखा हर समय कोई टेंशन ही नहीं, एक साथ चार चार इमरजेंसी, चार चार पेशेंट वेंटिलेटर पर, वो अपने फोन पर, फिर सिस्टर कहती थी डॉक्टर डॉक्टर आओ ना, तो आता था देखता था कर दिया फिर फोन पर, फोन कभी छूटता नहीं था, परंतु इतना कूल, बिल्कुल जैसे जरा भी उत्तेजना नहीं, जरा भी हलचल नहीं, नहीं तो इतनी इमरजेंसी कुछ नहीं। तो संसार में भी कुछ आत्मा एकदम शांत कूल। कभी कभी ऐसे भी होता है कि किसी ने गलती बहुत कर दी बड़ी, तब भी शांत रहते हैं, तब भी हलचल में नहीं आते। एक डॉक्टर अनुभव सुना रहा थे कि उन्होंने गलती से कोई एक लाइन गलत जगह डाल दी थी, तो जिसमें से थोड़ा शायद कॉम्प्लिकेशन हो रहा था, तो पर जितने लोग थे वहां पे दूसरे डॉक्टर, उन्होंने देखा ये भाई, ये डॉक्टर एकदम कूल है एकदम शांत, ऐसी परिस्थिति में भी कूल। तो हलचल में अचल स्थिर रहना, ये बहुत बड़ी प्राप्ति या योग की साधना है। कई कई लोगों को जन्मजात प्राप्त है, पर सबको नहीं, कोई कोई को। हमारे पास बहुत सारी क्रिश्चियन नंस आती है यहाँ की, सेंट सोफिया सेंट मैरी स्कूल की, बहुत स्थिर शांत चित्त, कोई हलचल नहीं। कोई ब्राह्मण आत्मा बहुत हलचल में आ जाएगी, पर वो उसको एकदम शांत, कोई उतावलापन नहीं है, बाहर बैठे रहेंगे, जब नंबर आएगा तब आएगी बरबटाइन से। तो स्थिर रहना, शांत रहना, हलचल की परिस्थिति में अडोल अटल अचल, ये साधना है तपस्या की, एक परिणाम या साधना भी कहो। तो बाबा ने कहा ये ड्रिल करो तो कंट्रोलिंग पावर आएगी और रूलिंग पावर आएगी। तो एक जो अभ्यास बताया वो करना है। आत्मा जैसे कांच है, आत्मा क्या है? कांच। शिव बाबा सूर्य है, उस सूर्य की किरणें इस कांच पर पड़ रही है और यहां से इंद्रधनुष सप्त रंग की किरणें चारों ओर फैल रही है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, एक मिनट भी अभ्यास करेंगे। रुकुटी तख्त पर विराजमान मैं चमकता हीरा, एक ज्योतिर्मय कांच, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे सब तरंग की किरणें जो और फैल रही है। ओम शांति।